हाय एवरीवन, मेरा नाम है मितेश मिश्रा एंड आई एम बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट फ्लश्ड इमोशंस। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। ये इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या हम इमोशनली इमैच्योर तो नहीं हैं, बहुत सारी चीजें। एपिसोड शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, इस एपिसोड में आप बहुत सी ऐसी चीजें सुनने वाले हैं जिनसे आपकी थिंकिंग जो है वो कई चीजों के बारे में बदल जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो हमारी अपनी एबिलिटी होती है जिससे हम अपने इमोशंस को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हैंडल करना सीखते हैं इन अ हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव वे। ये वो एबिलिटी है जो हमारी हेल्प करती है हमारे इमोशंस को समझने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में, और उसके बाद इस नॉलेज को हम यूज करते हैं अपने बिहेवियर को किस तरह से गाइड करना है। ये बेसिकली एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ मसल। जिम जा करके जैसे मसल बिल्ड करते हैं और डेवलप करते हैं, उसी तरह से हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। इमोशनल मैच्योरिटी बहुत तरीकों की होती है, जिसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि आप अपनी खुद के इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और समझने के बाद उस पर कैसे एक्ट करते हैं। दूसरी है एम्पैथी। ये आपकी हेल्प करती है ना सिर्फ अपने इमोशंस को समझने में, बल्कि अपने इमोशंस के थ्रू दूसरे के इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की। अगर आप दोनों एक ही सिचुएशन में हैं या आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो आप उस इंसान के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं। तीसरा है इमोशनल रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल कैसे करते हैं। समझने की बात यह है कि ये सोशल स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करना सीख पाते हैं इफेक्टिवली, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना सीख पाते हैं और अपनी जिंदगी में इमोशंस को अपना साथी बना करके रखते हैं, ना कि अपना दुश्मन। इसी पर अगर अपन बात करें और आगे बढ़ें, तो जनरली ये समझना कि हम इमोशनली मैच्योर हैं या इमोशनली इमैच्योर हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। मेरे हिसाब से अगर आप सोचें तो आप में से 90% लोगों को यह पता नहीं होगा कि आप लोग इमोशनली मैच्योर हैं या इमोशनली इमैच्योर हैं। हाँ, आप अपने आप को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ मैं इमोशनली मैच्योर हूँ, लेकिन जब सिचुएशंस अराइज होती हैं, पर्टिकुलर सिचुएशंस अराइज होती हैं, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को शो करता है, ना कि आपकी थिंकिंग इमोशनली मैच्योरिटी को शो करती है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब अपन बात करते हैं इन पर्टिकुलर इमोशंस के बारे में, जो तीन इमोशंस की बात की हमने, तीन इमोशनल मैच्योरिटी की पार्ट्स की बात की हमने. पहला है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस कैसे आ सकता है? इसके लिए आपको खुद को जानना जरूरी है, और खुद को जानने के लिए आपको बाहर आंसर सर्च करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है कि ये जितने भी टैग्स आपके ऊपर लगाए गए हैं बाय द सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके एनिमीज, आपके अक्वेंटेंसेस, आपकी इमेज जो है इन लोगों की बताई हुई बातों पर बेस्ड है. आपने कभी अपने आप से यह सवाल नहीं पूछा होगा कि हु एम आई, मैं अपने लिए क्या हूं. आप एक अच्छा बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉई हो सकते हैं, आप एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आप एक अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या हैं? ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने लिए क्या हूं, और इस मैं की वजह से मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता. ये इतना आसान नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. खुद को खोजना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जिसने खुद को खोज लिया उसके लिए इमोशनली मैच्योर होना बहुत आसान हो जाता है, सक्सेस अचीव करना बहुत आसान हो जाता है, और इन केस ऑफ फेलियर उस फेलियर से डील करना बहुत आसान हो जाता है. दूसरी है एम्पैथी. जनरली जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, लोग एम्पैथेटिक होते हैं. हम किसी की तकलीफ को देख करके महसूस करते हैं कि अगला उस तकलीफ में है, लेकिन जनरली हम उसके लिए कुछ करते नहीं है जो कि हमारे हाथ में है. देखिए, किसी की मदद सिर्फ पैसों से नहीं की जा सकती. एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं मैं आप लोगों से. गौतम बुद्ध को हम सब जानते हैं. गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक इंसान आया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं अपने घर वालों की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किसी और की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं. तो गौतम बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि किसी की मदद करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम अंदर झांक करके नहीं देख रहे. किसी की मदद करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, किसी के बोझ में, बोझ उठाने में उसकी मदद करो. भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं, किसी बुजुर्ग के लिए बाजार जाकर के सब्जियां ले आओ. भगवान ने तुम्हें जुबान दी है, उससे किसी के लिए अच्छा बोलो. कोई अगर परेशान है, कोई दुखी है, उसके लिए अच्छा बोलो. जिंदगी में मदद करने के लिए सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू होनी जरूरी नहीं है, तुम हर किसी की मदद कर सकते हो. तो आपको भी मदद करने के लिए यह सोचना नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं. आप शुरू तो कीजिए, अरे हाथ तो बढ़ाइए. अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअली इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है. इमोशनल रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब आप इमोशनली एक्साइटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, इन इमोशंस को आप रेगुलेट कैसे करते हैं, चैनल कैसे करते हैं प्रॉपरली. क्योंकि देखा जाए अगर तो हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. अगर हमें गुस्सा आता है तो हम अपने भाई, अपने बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनके ऊपर चिल्ला लेते हैं, फैमिली वालों के ऊपर चिल्ला लेते हैं, जॉब में अगर हमारे जूनियर्स हैं हम उनके ऊपर चिल्ला लेते हैं। इन इमोशंस को रेगुलेट करके अगर आप सही जगह चैनल करना सीख जाएं तो वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ना कि डिस्ट्रक्टिव। अब अपन बात करते हैं इमोशनल इमैच्योरिटी के बारे में। इमोशनल इमैच्योरिटी, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, ये इमोशनल मैच्योरिटी के बिल्कुल उलट होती है। इसमें आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप हर बात का बुरा मान जाएंगे और हर किसी की बात का बुरा मान जाएंगे तो आपके इमोशन को रेगुलेट करना और आपके इमोशन को मैनेज करना किसी और के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान खुद से नहीं करता, किसी की हरकत पर करता है। हाँ, खुश इंसान खुद से हो सकता है मेडिटेशन करके और बहुत सारी चीजें जिससे आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये किसी और के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। इस मेंटालिटी को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि गुस्साना आपके हाथ में नहीं है, आप किसी की हरकत पर गुस्साते हैं। दुखी होना आपके हाथ में नहीं है, आप किसी और की वजह से दुखी होते हैं। अगर इन कारणों पर आपका नियंत्रण हो, रेगुलेशन हो, तो आप अपने आप को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस से नहीं लड़ सकते, एंग्जाइटी से नहीं लड़ सकते। अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आप इमैच्योर हैं और आपको लगता है, अभी मैच्योरिटी के रीजंस बहुत हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, बचपन में आपके फैमिली में कोई ऐसा इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं था जो आपकी हेल्प कर सके, जिसकी वजह से आप ये समझ सके कि एक्चुअली इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है। और जनरली इमोशनल मैच्योरिटी के साइंस क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला है इनकेपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इमोशनली इमैच्योर हैं और आप अपने आप को फील करते हैं कि आप बहुत कमजोर हो जाएंगे अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को किसी से शेयर करेंगे तो आपको तकलीफ होगी और तकलीफ बढ़ जाएगी। दूसरा है कि आप दूसरों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डालते हैं, कुछ भी गलत होता है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि आप किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी डाल दें कि नहीं ये गलती मेरी नहीं है, किसी और की वजह से हुई है। एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है और एक्सेप्ट करना कि गलती मुझसे हुई है, हो सकता है मुझसे हुई है, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को शो करता है। और किसी और के ऊपर इल्जाम डाल देना, ये आपकी इमोशनल इमैच्योरिटी को शो करता है। तीसरा है कि आप मदद नहीं मांग सकते। देखिए, मदद मांगना कोई कमजोरी की बात नहीं है, मदद मांगना कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको छोटा बना देती है, मदद मांगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये कहना कि यस आई नीड हेल्प भी बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस किसी न किसी से मिल जाएंगे, आपके किसी दोस्त से मिल जाएंगे, आपके किसी फैमिली मेंबर से मिल जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज नहीं है, आप अपने किसी रिलेटिव के क्लोज हो सकते हैं। मैं अपने मामा के बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने अपने मामा से हेल्प मांगी जब मैं उस दौर से गुजर रहा था और उन्होंने मेरी हेल्प की। तो आप भी इस बात को समझिए कि ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मदद मांगना बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करते हैं, ये अगला साइन है कि आप इमोशनली इमैच्योर हैं। जब आप अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हैं रोकते हैं तो ये स्ट्रेस की ओर आपको ले जाता है, और जब स्ट्रेस आपको होता है तो आप स्ट्रेस रिलेटेड रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपकी स्लीप हाइजीन खराब हो जाती है, आपको माइग्रेन्स होना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट की फीलिंग शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि ये इमोशनल इमेच्योरिटी इंसान में आती कैसे है, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि आपके बचपन में आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो। अब ट्रॉमा ये नहीं होता कि एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, या चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि आपको पता भी नहीं है और आपका कॉन्शियस जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो आपको रोक दिया गया, जब आपने अपना गुस्सा जाहिर करने का कोशिश को जाहिर करने की कोशिश की तो आपको रोक दिया गया, जब आपने अपनी प्यार को जाहिर करने की कोशिश की तो आपको रोक दिया गया। या आप ऐसे फैमिली में पले बड़े हैं जहां पर इमोशंस को इतना ज़्यादा शो नहीं किया जाता, यानी कि प्यार भी नहीं दिखाया जाता और गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और चैलेंजेस बहुत दिखाए जाते हैं और आपको समझाया जाता है जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मेरी बात मानिए, गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, गुस्सा करिए पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। गुस्सा करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को हर्ट करें, गुस्सा करने का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बताइए। वो एक मॉरल तरीके से भी की जा सकती है, चिल्ला करके नहीं, मॉरल तरीके से भी आप अपनी अपना डिसकम्फर्ट और अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको अपन आगे के एपिसोड्स में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ फेलियर। आपके लिए डेफिनेशन ऑफ फेलियर क्या है, ये डिपेंड करता है आपके अपब्रिंगिंग पे कि आपके लिए डेफिनेशन ऑफ फेलियर क्या है। किसी फैमिली में अगर बच्चा 40% भी लेकर के आता है एग्जाम में तो वो सेलिब्रेट होता है, और किसी फैमिली में अगर बच्चा 98% लेकर के आता है तो भी पेरेंट्स जो होते हैं वो खुश नहीं होते हैं कि मेरा बच्चा 98% लाया और सामने वाला 99% लाया। तो ये डेफिनेशन ऑफ फेलियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके मौजूद रहने की कैपेबिलिटी, यानी कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। आप जब तकलीफ में थे तो कोई आपके साथ मौजूद नहीं था, आप जब सैड थे तो आपके साथ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आपने ये एब्सेंस फील की है और आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, आप एक शेल में चले जाते हैं जब आप सैड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ अंदर कूप अप होने लगती है, एक एक ज्वालामुखी सा बन जाती है, जस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोड। उसके बाद आता है अपने आप के बारे में और अपनी आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होना। जैसा कि मैंने बोला ना कि आपकी आइडेंटिटी जो है ये टैग्स आपको आपके आसपास के लोगों ने दिए, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है ये आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की है। 99% लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर नहीं करते, वो जानना ही नहीं चाहते। इन रीजंस की वजह से होता यह है कि आप चीजों को अलग और गलत पर्सपेक्टिव में पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई बहन कजिन्स किसी भी सिबलिंग के साथ आर्ग्यूमेंट में होते हैं तो आप अपने इमोशंस को एग्जामिन नहीं करते। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को एग्जामिन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो स्टेप बैक, एक कदम पीछे आ जाइए, फिगरेटिवली एक कदम पीछे आ जाइए और अपने इमोशंस को एनालाइज करिए कि अभी आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहां आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है, उस नेगेटिव फीडबैक को अपनी बेइज्जती मत समझिए, वो नेगेटिव फीडबैक आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का काम कर सकता है, वो नेगेटिव फीडबैक आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सोचने वाली लाइफ है, बात है कि लाइफ जो है वो इजी नहीं है, लाइफ डजंट कम इजी, आपको हर जगह क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ेगी, इट्स अ फैक्ट। अगर आप इंडिविजुअल हैं जिसका खुद का बिजनेस है, आप अकेले काम करते हैं, तो भी आपको क्रिटिसिज्म झेलनी है अपने कस्टमर्स की और अपने एम्प्लॉयज की, अगर आप एम्प्लॉयज रखते हैं या फ्रीलांसर्स रखते हैं जिनको आप आउटसोर्स करते हैं बिजनेस, या जिन लोगों के यू नो साथ आपने बिजनेस शुरू किया है. क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट डोंट मेक इट द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. Let it be the part of your life. Don't make it the part of your identity. Your identity must be independent of all these negative traits. आप अगर accountability दिखाते हैं कि आप सीखने से नहीं डरते, changes करने से नहीं डरते, आपका instinct जो है वो defensive होने की बजाय, ठीक है, एक पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन का फॉर्म ले ले, आप अपने एक्शंस के प्रति ऑनेस्ट हो, अपने फीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट हो, ये सारी चीजें जब होती हैं तो आप अपने आप को इमोशनली मैच्योर बना सकते हैं. देखिए, सबसे आसान तरीका है खुद को इमोशनली मैच्योर बनाने का, उस पर अपन आएंगे. उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं. एक लड़का था, चलिए हम उसे अजय बुलाते हैं. अजय जो था बहुत गुस्सैल था, हर बात पर गुस्सा करता था, अपने भाई बहनों से लड़ाई करता था, अपने माँ बाप से लड़ाई करता था, और जब वो लड़ाई कर लेता था तो उसके बाद उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती थी बहुत जोर से. वो समझ नहीं पाता था कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट करता है सिचुएशंस में, और ये कई सालों तक चलता रहा. कई सालों के बाद किसी ने सजेस्ट किया उसको कि आप इस इंसान से जाइए और मिलिए. वो गया और उस इंसान से मिला, और उस इंसान ने उसे एक स्टोरी सुनाई, द स्टोरी ऑफ टू फॉक्सेस दैट लिव इनसाइड अस. फॉक्सेस नहीं, वुल्फ बोलते हैं. स्टोरी ऑफ टू वुल्फ्स, दो भेड़ियों की. एक भेड़िया जो है वो सेंसिटिव है, हैप्पी है, पॉजिटिव है. एक भेड़िया जो है एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, टिक्ड है. आपका जो आउटलुक है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो इन दो भेड़ियों पे डिपेंड करती है कि आप किसको खिलाते हैं. अगर आप उस भेड़िये को ज्यादा खिलाते हैं जो कि गुस्सा करता है, जो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जो हमेशा टिक्ड ऑफ रहता है, यानी कि आप गुस्सा करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप टिक्ड ऑफ रहते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी उस वुल्फ की हो जाती है. और अगर आप उस वुल्फ को खिलाते हैं या फीड करते हैं जो कि पॉजिटिव है, हैप्पी है, और यू नो इमोशनली मैच्योर है, तो आपकी आइडेंटिटी वैसी हो जाती है. और इसको करने के लिए, पॉजिटिव फीड करने के लिए अपने आप को, आपको एक चीज बहुत जरूरी है करना, और वो है मेडिटेशन. नाउ मेडिटेशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. इट्स नॉट सिटिंग यू नो क्रॉस लेग्ड, हैंड्स ऑन योर यू नो थाइज एंड क्लोज्ड आईज एंड डूइंग थिंग्स. नाउ मेडिटेशन कैन बी आप सीधे छत पर जाकर के कोने में खड़े हो जाइए और सनसेट देखिए. लेकिन उस सनसेट को देखिए, फील करिए, समझिए, भूल जाइए दुनिया में और क्या हो रहा है, सिर्फ उस सनसेट पर फोकस करिए. लेट योर माइंड रिलैक्स विद दैट सनसेट. एक बहुत अच्छा गाना जो आपको पसंद हो, दुनिया से दूर हटकर, शोर से, शराबे से, कोने में जाकर के, कान में हेडफोन लगा करके मीडियम साउंड पर अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनिए. और उस सॉन्ग को सुनिए मत, उस सॉन्ग को जिए, लिव दैट सॉन्ग. आपका फेवरेट सॉन्ग फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो आपका फेवरेट सॉन्ग. और प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए. देखिए, पास्ट कुछ नहीं है क्योंकि पास्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं. फ्यूचर भी कुछ नहीं है, ये बात समझ लीजिए. जो है प्रेजेंट है, हर चीज प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है. फ्यूचर में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सारी चीजें प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं. प्रेजेंट में जीना सीखिए. बी प्रेजेंट फॉर एवरीवन, बी प्रेजेंट फॉर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. If you don't love yourself, who else is going to love you? अब इमोशनल मैच्योरिटी इम्प्रूव करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. डिटेल में नहीं बताऊँगा, छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. पहला है कि एक ग्रोथ माइंडसेट बनाइए. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, नई चीजें सीखिए, नए स्किल्स सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. ग्रोथ माइंडसेट, अपने आप को आगे बढ़ाइए. इफ यू आर फीलिंग स्टक, इट्स बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट योर जॉब दैट इज मेकिंग यू फील स्टक, इट्स यू हु इज मेकिंग योर सेल्फ फील स्टक. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्न न्यू थिंग्स. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लर्नड. कॉन्टैक्ट मी एंड आई टेल यू अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स यू नो हार्वर्ड डिग्रीज फॉर फ्री. आई मीन इट्स यू नो अफिलियेटेड विथ हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू नो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. उसके बाद ट्राई टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज. लोगों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए, फैमिली में बनाइए कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा. दोस्तों में बनाइए कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा. अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ एक बाउंड्री बना करके रखिए. अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए. बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझिए कि क्यों है, इसका रीजन क्या है कि मैं आज दुखी क्यों हूं. लेट अस सिट बैक, रिलैक्स एंड आस्क माई सेल्फ कि मैं आज दुखी क्यों हूं. नेगेटिविटी को दूर रखिए अपने आप से. अपने मिस्टेक्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए. अगर आपने मिस्टेक की है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. डोंट ब्लेम अदर्स, योर मिस्टेक इज योर मिस्टेक. ठीक है. और फाइनली फाइंड अ रोल मॉडल, अ मेंटर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. कैन बी डिबेटेबल, बट फॉर मी ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ही इज बीन कोच्ड बाय राहुल द्रविड. नो क्वेश्चंस, राहुल द्रविड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. लेकिन दोनों का खेलने का पैटर्न अलग है. अगर आप राहुल द्रविड को जानते हैं और आप विराट कोहली को जानते हैं, तो आप जानते हैं दोनों के खेलने का पैटर्न अलग है. लेकिन फिर भी विराट कोहली को कोच की जरूरत है. सचिन तेंदुलकर को कोच की जरूरत थी, मेंटर की जरूरत थी. गॉड ऑफ क्रिकेट नीडेड अ मेंटर. तो आप इतने बड़े नहीं है कि आप एक रोल मॉडल नहीं खोज सकते, एक मेंटर नहीं खोज सकते. बाहर जाइए, किताबें पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए कि कौन है वो जो आपकी हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, आपके ग्रोथ में आपकी मदद कर सकता है, आपके इमोशंस को समझने में आपकी मदद कर सकता है. आपके परिवार में से कोई हो सकता है. आप अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो आप इंटरनेट पे यू नो रील्स स्क्रोल करने के बजाय इन चीजों पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं. एक मेंटर जरूर रखिए अपनी लाइफ में, जिसके पास आप जा सके टू आस्क फॉर यू नो राइट थिंग टू डू. एंड देन जैसा कि मैंने बोला, जस्ट लाइक योर मसल्स इन द बॉडी, यू कैन वर्क आउट टू ग्रो योर इमोशनल मैच्योरिटी. देखिए, सीधी सी बात है, जिंदगी आज तक किसी के लिए आसान नहीं है हुई है और ना आगे किसी के लिए होगी. जिंदगी को आसान बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिंदगी अपने हिसाब से दूसरों के लिए जिया जाए. जब आप खुद के लिए जीते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो अपनी तकलीफें छोटी हो जाती हैं. आप भूल जाते हैं कि आपको तकलीफ है. देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को कंपेयर करिए कि मेरे पास तो कार है, कई लोगों के पास तो बाइक भी नहीं है. देखिए, कंपैशनेट होना जरूरी है, लेकिन अपना बार हमेशा ऊपर सेट करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, आपके पास कार है, कई लोगों के पास नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है. आपको आगे बढ़ना है, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप उन लोगों की मदद कर सकें जिनके पास कार नहीं है, उनको कार खरीदने में। क्या पता आप उनके लिए मेंटर बन जाएं, क्या पता आप उनके लिए एक गॉडफादर बन जाएं। जिंदगी आज है, दिस मोमेंट राइट नाउ। जैसा कि मैंने बोला, ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। एवरीथिंग लाइज, द रियलिटी बिलोंग्स टू द प्रेजेंट, एवरीथिंग एल्स इज स्पेक्यूलेटेड। पास्ट इज डन, फिनिश्ड, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इसका मतलब खत्म। फ्यूचर अनडिफाइंड, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वॉट यू कैन डू इज ग्रो एंड ग्रो एवरी डे। आपको एक टिप देता हूं, जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं ना, तो अपने कल वाले अवतार से नफरत कीजिए कि मैं जो कल था वो एक वर्थलेस इंसान था, आज मुझे वर्दी बनना है। और ये प्रैक्टिस रोज करिए, रोज 40 मिनट पढ़िए कुछ नया, कुछ नया सीखिए, कोई सर्टिफिकेशन करिए, कोई कोर्स कर लीजिए। बहुत से फ्री कोर्सेज अवेलेबल, गूगल स्किल शॉप पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे सर्च करिए, यूट्यूब पर चले जाइए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। कीजिए, सीखिए, आप यहां सीखने आए हैं, सीख कर नहीं आए हैं। तो ये थी इमोशनल मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी की बात। समझने वाली बात ये है कि हम में से कितने लोग इस इमोशनल मैच्योरिटी को अपना बनाते हैं और इमोशनल इमैच्योरिटी से बाहर निकलकर वर्क कर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, आपकी खुशियां, आपका दुख, आपकी तकलीफें आपकी अपनी हैं, किसी और की नहीं है। किसी ने आपके लिए तकलीफ नहीं बनाई है, किसी ने आपके लिए कोई दुख नहीं बनाया है। ये आप डिसाइड करते हैं कि किस बात पर दुखी होना है, किस बात पर खुश होना है, किस बात पर फ्रस्ट्रेट होना है, किस बात पर चुप रहना है। आई होप कि मेरी ये बातें आपको कुछ हद तक हेल्प कर रही होंगी या करेंगी। आई होप कि आप इस पॉडकास्ट से कुछ सीख करके जाएंगे। एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज मितेश मिश्रा साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस एंड लर्न एवरी डे। Thank you so much for listening. And I'm very, very, very appreciative towards people who followed my podcast. And I'm very thankful to the people who are going to follow my podcast if they want to. I hope I brought some value to your life. And I'll try to bring more value to your life in the coming sessions. So stay tuned. That's all. Thank you so much.